सूफी मत का विकास पृष्ठ 23। एक मत के रूप में सूफी मत 9वीं शताब्दी ईस्वी में उभरा। सूफी मत के इस सैद्धांतिक उदय में भी किसी मत के संगठन का उद्देश्य नहीं था, बल्कि सूफी विद्वान यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि सूफी मत इस्लामी विधान का उल्लंघन नहीं करता। यह दौर इस्लाम के अत्यधिक प्रभाव का दौर था तथा इस्लामी आदेशों का तनिक सा उल्लंघन भी तत्कालीन धर्मान शासकों को सहे नहीं था। जून नून नूरी मंसूर जैसे सूफियों को इसी धर्मधता के हाथों दंडित होना पड़ा था। जो भी हो, समय की आवश्यकताओं ने उन साधकों की साधना पद्धति को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जो इस्लाम के कठोर विधि विधान में रहते हुए भी अपनी आत्मा में अंकुरित ईश प्रेम का संवरण करने में असमर्थ थे। इस संबंध में सर्वप्रथम ज्ञात प्रयास जून नून 796 से 829 ईस्वी ने किया था। जुन्नून ही वह प्रथम विचारक हैं जिसने सूफी साधना में अहवाल अर्थात स्थितियों तथा मकामत अर्थात चरणों पृष्ठ 24 के महत्व को स्पष्ट करके मारिफत अर्थात रहस्य ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। जुन्नून ने ही पहली बार सूफी साधक की प्रेम पिपासा को शराब तथा प्याले के प्रतीक प्रदान किए। इस्लामी समाज जुन्नून की इन रहस्यवादी व्याख्याओं को सहन नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप 829 ईस्वी में उसे बंदी बनाकर बगदाद भेजा गया, जहां खलीफा ने उसे मिस्र लौट जाने का आदेश दिया। अबुल कासिम जुनैद ने रहस्य ज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करते हुए सूफी साधना के लिए फना और बका का मार्ग प्रशस्त किया। जुनैद के अनुसार सूफी साधना में फना अर्थात मृत्यु और बका अर्थात जीवन पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि यहाँ न फना का अर्थ शरीर का अवसान है और न बका का अर्थ श्वास का चलते रहना है। जुनैद ने फना को आत्मलय तथा बका को परमात्म रूपता के अर्थों में प्रतिपादित किया। सूफी साधना पद्धति को जीवन यापन द्वारा सिद्धांत रूप में प्रस्थापित करने का श्रेय मुंगीसुल्लम बिन मंसूरुल हल्लाज को प्राप्त हुआ होता है, जिसे मंसूर के नाम से स्मरण किया जाता है। मंसूर ने आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता को साधना की आधार भूमि बताकर यह घोषित किया कि अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर ईश प्रेम साधक को ब्रह्म तत्व प्रदान करके परमात्मा स्वरूप बना देता है। इसी आधार पर उसने अनलहक अर्थात अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कट्टर सनातनी मुसलमानों के हाथों 9 वर्ष तक कारागार की यातनाएं भोगकर अंततः फांसी का फंदा चूमना पड़ा। इश्क के इस सिद्धांत को अद्वैत के आधार भूमि प्रदान करके तथा आत्मा को दिव्य तत्व से समाहित करके अबू बकर शिबली ने और भी सुदृढ़ बना दिया। शिबले ने साधक के मन की समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं को ईश प्रेम से स्थानांतरित करने का उपदेश दिया और जमकर बाह्याचार की निंदा के परिणाम स्वरूप सनातनी मुसलमानों ने उसे पागल खाने में बंद कर दिया। इस समय तक सूफी मत एक मत के रूप में उदित हो चुका था तथा सूफी साधकों की अलग पहचान स्थापित हो चुकी थी। 10वीं शताब्दी ईस्वी में सूफियों की साधना पद्धति के 2 सैद्धांतिक पक्ष भी स्थापित हो गए थे, जिन्हें सुक्र अर्थात उन्माद तथा सहव अर्थात अनुद्वेग कहा जाता था। सुक्र सिद्धांत के प्रवर्तक बायजीद और मंसूर थे तथा सहव के मुसाहिबी और जुनैद। सूफियों की अलग पहचान स्थापित होते ही सनातन पंथी मुसलमानों की आशंका बढ़ने लगी तथा सत्ता ने उनके विरुद्ध दमन चक्र चला दिया। इस दमन चक्र से सूफी मत अस्तित्व विहीन नहीं हुआ, अपितु जन साधारण के हृदय में सूफी संतों के प्रति श्रद्धा भाव और भी सुदृढ़ हो गया। इसका मुख्य श्रेय सूफियों के व्यवहार को जाता है। सूफी मानव समुदाय के प्रति अत्यंत दयावान पृष्ठ 25 थे तथा उनका सहज स्नेह किसी संप्रदाय या धर्म विशेष के अनुयायियों तक सीमित न होकर प्राणी मात्र के लिए अबाध गति से प्रवाहमान था। मनुष्य ही नहीं, सूफी साधकों के हृदय में पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा, दया तथा प्रेम का अतिरेक विद्यमान था। ये सूफी साधक सम्भ्रांत वर्ग से दूर रहते थे तथा जन साधारण के मन में इनकी बैठ बनी हुई थी। 11वीं शताब्दी में अबू हमीद गजाली 1058 से 1111 ईस्वी ने मुस्लिम समाज में सूफियों के प्रति सद्भाव एवं सौहार्द उत्पन्न करने की दृष्टि से तथा सनातन पंथी मुसलमानों के विरोध को शांत करने के उद्देश्य से सूफी मत की व्याख्या इस प्रकार से की कि इसे इस्लामी दर्शन का अंग बना दिया। गजाली ने कुरान के अनुरूप प्रभु की सार्वभौमिकता तथा सर्वशक्तिमत्ता स्थापित करते हुए ज्ञान की महत्ता पर तो बल दिया, लेकिन साथ ही उसने ध्यान द्वारा किए जाने वाले ईश से साक्षात्कार की संभावना को भी पुष्ट कर दिया। वस्तुतः गजाली ने सूफी मत को दार्शनिक आधार भी प्रदान किया और इस्लामी विधि विधान के साथ इसका सामंजस्य भी बिठा दिया। इसी शताब्दी में गजाली की इस समन्वय भावना को अबुल कासिम कुशैरी ने पोषित किया। 12वीं-13वीं शताब्दी में सूफी मत को व्याख्याताओं के रूप में तीन महान कवि प्राप्त हुए, ये थे सनाई, अत्तार और रूमी। अबुल मजदूद सनाई ने ईश्वर मुहम्मद तर्क एवं ज्ञान के संबंध में सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फुरीदुद्दीन अत्तार ने अनुभव जन्य ज्ञान पर बल देकर सूफी साधना को फना अर्थात निर्वाण के साथ आबद्ध किया और जलालुद्दीन रूमी ने हाल या वज्द अर्थात भावाविष्टावस्था को सूफी साधना के महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में प्रकाशित किया। सनातन पंथी मुसलमानों का कट्टर विरोध तथा मुस्लिम शासकों का दमन चक्र भी सूफी मत के प्रचार एवं प्रसार की गति को अवरुद्ध न कर सका। 13वीं शताब्दी तक सूफियों की अनेक खानकाहें अर्थात आश्रम स्थापित हो चुकी थी तथा विचारों एवं साधना पद्धतियों की भिन्नता के कारण सूफी मत अनेक संप्रदायों में विभाजित हो चुका था। सूफियों के विभिन्न संप्रदायों के आविर्भाव का मुख्य कारण यह था कि सूफी साधना को किसी नपे तुले सिद्धांत के रूप में बांधना संभव नहीं था। सूफी साधक आत्मा के जिस पिपासा को लेकर प्रिय मिलन के मार्ग पर अग्रसर होता है, वह पिपासा प्रत्येक व्यक्ति की नितांत वैयक्तिक पिपासा है तथा इस यात्रा के समस्त अनुभव भी उसके नितांत वैयक्तिक अनुभव हैं। विचारकों द्वारा प्रस्तुत सूफी मत की अनेकानेक व्याख्याएं भी इसी तथ्य की द्योतक हैं कि सूफी मत वास्तव में आत्मा की सर्वकालिक सार्वभौमिक पिपासा का नाम है, जिसे शांत करने का अनुभव भी प्रत्येक व्यक्ति पृष्ठ 26 का नितांत व्यक्तिगत अनुभव है। प्रेतम से साक्षात्कार के आनंद को कबीर जैसे मनीषी भी ज्यो गुड़े गुड़ खाइया कहकर रह गए हैं, क्योंकि ब्रह्मानंद को परमानंद को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाना असंभव है। अतः सूफी मत की सर्वमान्य एकमात्र परिभाषा का आग्रह भी उचित नहीं है। समाप्त।